नमस्कार भारत, तारीख 9 अगस्त दिन रविवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया में है आज रैली। इस रैली के राजनीतिक मायने क्या हैं?
इस लिहाज से भी कि वो एक जदयू की जो पकड़ है या आरजेडी की जो पकड़ है उसको तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए यह रैली हो रही है। इस लिहाज से भी इसका राजनीतिक महत्व है।
ताइवान के बाद टाइफून सुलेडोर का कहर चीन पर। समझौता एक्सप्रेस धमाके मामले में कई महत्वपूर्ण गवाहों के मुकरने के बाद क्या हिंदू चरमपंथियों से जुड़े मामले कमजोर हो रहे हैं?
जब से भाजपा की केंद्र में सरकार बनी है तब से हर उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करी जा रही है जिसमें कि संघ परिवार के लोग ऐसे ऑफेंसेस में अक्यूज रहे हों।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। बिहार के गया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन किया गया है। रैली से पहले शहर में लगे उनके पोस्टर फाड़ दिए गए। बीजेपी के सदस्यों ने पोस्टर फाड़े जाने की निंदा की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व पोस्टर फाड़ रहे हैं। कांग्रेसी नेता आरपीएन सिंह ने मोदी के पोस्टर फाड़े जाने की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करती है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल में ही हुई एक और ब्लॉगर की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसी हत्याओं को और सहन नहीं किया जाएगा। नीलाद्री चटर्जी इस साल में चौथे ऐसे उदारवादी विचारधारा वाले ब्लॉगर थे जिनकी कल हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी ने बीबीसी से बात करते हुए नाराजगी जताई थी कि पुलिस ने अभी तक इस अपराध के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। कल राजधानी ढाका में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस हत्या पर एक जुलूस भी निकाला। इस विरोध प्रदर्शन के प्रवक्ता इमरान सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से अपील की कि वो जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करें।
दाबी जानाच्छि जे सरकार आगामी 7 दिनेर मध्ये ए अपराधीदेर के खुजे बेर करे तारा प्रमाण करू।
हम मांग करते हैं कि अगले 7 दिनों में इस हत्या के गुनहगारों को गिरफ्तार किया जाए। इससे सरकार की तरफ से ये बात साफ हो जाएगी कि सरकार या पुलिस का इस हत्या में कोई हाथ नहीं था। ये थे इमरान सरकार के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लेबनान की राजधानी बेरूत में हजारों प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि अधिकारी कचरा हटाने की व्यवस्था को लेकर पैदा हुए संकट को जल्द से जल्द खत्म करें। कचरा प्रबंधन ठीक से ना हो पाने के कारण बेरूत की गलियां कूड़े और बदबू से भर गई हैं। इससे स्वास्थ्य को भी खतरा बढ़ गया है। मार्टर स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पर्यावरण मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। पिछले महीने बेरूत के एक प्रमुख कचरा भराव क्षेत्र को बंद किए जाने और उसका कोई विकल्प न ढूंढ पाने के कारण शहर भर में कचरा फैल रहा है। फिलहाल दो अस्थाई कचरा भराव क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। मालदीव के सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने एक गुमशुदा पत्रकार के परिवार और समर्थकों को तितर बितर करने के लिए उन पर मिर्ची मिले हुए पानी से बौछार की। एक साल पहले गायब हुए 28 वर्षीय अहमद रिलवान के करीब 200 समर्थक राजधानी माले में एक जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस से पहले रिलवान के परिवार ने जनसभा में एक मिनट का मौन रखा। अहमद रिलवान एक समाचार वेबसाइट के लिए काम करते थे और आपराधिक गिरोहों और मालदीव में इस्लामिक चरमपंथ पर भी लिखते थे। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन ने रिलवान के परिवार से मिलने और इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। सिंगापुर मलेशिया से आज़ाद होने की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर एक भव्य परेड, आतिशबाजी और एयरफोर्स के विमानों के प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। पूरे सिंगापुर में एक लाल बिंदी का प्रतीक चिन्ह बंदरवार की तरह लहरा रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के गया में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। गया में कल मोदी के पोस्टर फाड़े जाने के बाद आज रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। गया में प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली के सियासी मायने और दूसरे पहलुओं पर कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्हें कल दिल्ली में बिहार फाउंडेशन के कार्यक्रम में कुछ युवकों के विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा था। कल ही भारतीय जनता पार्टी के नेता रामनाथ कोविंद को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रामनाथ कोविंद के नाम पर मंजूरी की मोहर लगा दी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस नियुक्ति से खुश नजर नहीं आए। उन्होंने दावा किया कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले केंद्र सरकार ने परामर्श नहीं किया। नियमों का हवाला देते हुए नीतीश कुमार संवाददाताओं से बोले,
मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है। अब तक की जो परंपरा है जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री राज्य सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से इस विषय पर बातचीत करते हैं, लेकिन अब तक जो मेरा अनुभव है और जो परंपरा का ज्ञान है, इस बार तो कोई बातचीत नहीं हुई है, मैंने मीडिया के माध्यम से जाना है।
तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि उन्हें नहीं मालूम कि राज्य में नए राज्यपाल की नियुक्ति हो गई है, मीडिया के जरिए उन्होंने जाना। तो आज मोदी की रैली है, इस पर हम लौटते हैं। मैंने बात की हिंदुस्तान के राजनीतिक संपादक विनोद बंधु से, स्थानीय संपादक, और उनसे पूछा कि मुजफ्फरनगर पहले वो गए और अब गया जा रहे हैं, क्यों? लेकिन
वैसे तो वो और भी रैलियां करने जा रहे हैं, तो अभी उन्होंने शुरुआत उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर से की और ये गया दक्षिण बिहार मगध का इलाका है। तो जो रैलियां उनकी तय हैं वो तिरहुत के बाद गया में है, फिर उसके बाद भागलपुर में है, सहरसा में है, कोसी इलाके में है। लेकिन इस रैली का एक और महत्व है कि जीतन राम मांझी ने जदयू से बगावत करने के बाद उनकी निकटता भाजपा से बढ़ी और उन्होंने खुद कहा भी उन्हीं के कहने पर यह रैली हो रही है। तो मगध में अभी MLC का चुनाव भी हुआ है और उसमें भी जदयू को अच्छी सफलता मिली है, जबकि पूरे ओवरऑल BJP को सफलता मिली, लेकिन मगध में और भोजपुर इलाके में जदयू और RJD को सफलता मिली। तो इस लिहाज से भी कि वो एक जदयू की जो पकड़ है या RJD की जो पकड़ है उसको तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए यह रैली हो रही है, इस लिहाज से भी इसका राजनीतिक महत्व है।
विनोद बंधु जी, जिस तरह से अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने खुला पत्र लिखा नरेंद्र मोदी को और उसके बाद NDA की ओर से एक जवाब मिला, इन सब घटनाओं के परिपेक्ष में अगर इस रैली को देखें तो क्या ये नीतीश कुमार के सवालों का एक जवाब भी हो सकती है?
बिल्कुल, जवाब भी वो देंगे ही, किस रूप में देते हैं ये देखा जाएगा, लेकिन बिहार की राजनीति का सबसे कमजोर और काला पक्ष ये है कि इस चुनाव में बहुत ज्यादा तल्खी नजर आ रही, पहले के चुनावों में इस तरह की तल्खी नहीं है। ये चुनाव मुद्दों से भटक रहा है और व्यक्तिगत लड़ाई जैसी इसमें कुछ बातें नजर आ रही हैं। जैसे नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के PM कैंडिडेट बनाने के सब सवाल पर NDA से अपना रिश्ता तोड़ा था, तो BJP के लोग इस चीज को अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं और वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बाहर किया जाए। कह रहे हैं कि हमें बाहर किया गया तो हम नीतीश कुमार को भी बाहर करके रहेंगे। तो इस चुनाव में जो जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल हो रहा है या जिस तरह से व्यक्तिगत प्रहार हो रहे हैं उसमें मुद्दों पर बहुत कम चर्चा होती है। बात तो विकास से शुरू होती है, हर आदमी विकास की बात कर रहा है, लेकिन विकास से वो बात अंत चली जाती है व्यक्तिगत सवालों पर। यह तल्खी है और निश्चित रूप से इस चुनाव में फिर आज की रैली में भी नीतीश कुमार और लालू यादव पर सीधे अटैक करेंगे। पिछली रैली में जब उन्होंने DNA का सवाल उठाया था तो उसको लेकर काफी ये हुआ था और लोगों ने भी इसकी आलोचना की थी कि प्रधानमंत्री के स्तर से इस तरह की भाषा नहीं कही जानी चाहिए, तो उसको उसका कई रूप में इन्होंने सुधार किया, कहा नहीं राजनीतिक DNA पर पहार किया था, नीतीश कुमार का राजनीतिक DNA इस तरह का है, उसकी व्याख्या करते रहे हैं। तो आज की रैली में भी वो सब दिख सकता है, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, लेकिन बाकी नेताओं के भाषण में तो निश्चित रूप से बहुत तल्खी दिखेगी।
जिस तरह से नए राज्यपाल आए हैं बिहार में और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया, क्या ये दोनों मतलब केंद्र और राज्य के बीच में बढ़ती हुई खटास के रूप में हम इसे देखेंगे?
निश्चित रूप से राज्यपाल की नियुक्ति में नीतीश कुमार का सुझाव नहीं लेने का सीधा यही अर्थ है कि उनको इग्नोर करना, और ये संबंधों के कारण है, दोनों तरफ के जो संबंध इतने कटु होते जा रहे हैं कि इस कारण भी हुआ है।
स्थानीय पत्रकार विनोद बंधु विश्लेषण कर रहे थे कि आज नरेंद्र मोदी रैली में क्या कह सकते हैं और रैली के संबोधन के राजनीतिक मायने क्या है। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, ताइवान में कल समुद्री तूफान सुलेडोर ने भारी तबाही मचाई और अब वो दक्षिण पूर्व चीन तक पहुंच गया है। हालांकि चीन के प्रभावित प्रांत फुजियान में प्रशासन ने मुस्तैदी से करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है, लेकिन भारी बारिश और तेज हवाओं ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रेल सेवा और हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, स्कूल और दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का भेजा सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
समुद्री तूफान सुडेल और ताइवान में तबाही मचाने के बाद अब दक्षिण पूर्व चीन की तरफ बढ़ चला है। इस तूफान ने प्रभावित इलाकों में आम जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सुडेलोर की चपेट में आए इलाकों से हजारों लोग घर खाली कर चुके हैं, लाखों घरों की बिजली गुल हो गई है और पानी की सप्लाई ठप। सरकारी मीडिया के मुताबिक कल रात फुजियान प्रांत इस समुद्री तूफान की चपेट में आया। फुजियान प्रशासन ने समय रहते इसकी चेतावनी लोगों को दे दी थी। कम से कम 1,63,000 लोगों से घर खाली करवाकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। फुजियान में भारी बारिश और तेज हवाओं की खबर है। हालांकि अब तूफान की प्रबलता कम होती जा रही है, लेकिन खबर है कि प्रशासन ने एहतियातन पड़ोसी प्रांत झेजियांग से भी लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। तूफान के रास्ते में पड़ने वाली रेल सेवाएं और हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, इससे कई यात्री फंस गए हैं। स्कूलों और दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। इससे पहले सुडेलोर ने ताइवान में भारी तबाही मचाई, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। ताइवान में तेज बारिश के साथ 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे राजधानी ताइपेई में ही करीब 2,000 पेड़ उखड़ गए और कई बिलबोर्ड गिर गए। एक गांव भूस्खलन की चपेट में भी आ गया। चीन तक पहुंचते पहुंचते हवा के वेग में कमी आई है, लेकिन ताइवान और चीन के बीच भी हवा का वेग 144 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज किया गया।
ताइवान के बाद टाइफून सुलेडोर का कहर अब चीन पर। रुख भारत का करते हैं। राजस्थान के जयपुर में रिक्शा चालक आबिद कुरैशी ने सड़क पर लावारिस मिले 1,17,000 रुपए पुलिस को सौंप दिए। एक रिक्शा चालक के लिए ये रकम जो है वो बहुत बड़ी है। अब हर कोई आबिद की ईमानदारी की तारीफ कर रहा है। आबिद का कहना है कि वो किसी और के धन पर ईमान का नहीं डोलना चाहिए। उनका कहना है कि किसी और के धन पर अपना ईमान नहीं डोलना चाहिए। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
न नोटों के बंडल से नीयत बदली, ना उसका ईमान फिसला। आबिद का रिक्शा भी पराई अमानत है और उसके पास सिर छिपाने के लिए खुद का आशियाना भी नहीं है, लेकिन गरीबी और अभावों के बावजूद आबिद ने ईमान का दामन नहीं छोड़ा। वो एक रिक्शा चालक है, उसकी जिंदगी पैरों में है, लेकिन अब आबिद के ईमान की चर्चा अपनों में भी है तो गैरों में भी। जयपुर पुलिस ने आबिद की सराहना की है। आबिद ने बीबीसी को बताया कि रुपए उसे बाजार में एक थैली में पड़े मिले थे। उसने घर ले जाकर अपनी पत्नी अमीना को बताया और बाद में दोनों ने यह रकम पुलिस को सौंप दी।
जी, हमने लात मार के देखा था। पहले हमें छोड़ा रास्ते में मिला था पैसा, धमानी मार्केट गए। हमने तो घर पर रख दिया था एक दिन, तो वो तो हमने मशूरा कहता था जिसका पैसा हमने दे दिया। हमारे देने के ख्याल में आए थे दिन में, हमने दे दिया वो पैसा, थाने में दिया कोटवाड़ी में, किसी ने भी नहीं देखा। हुआ हुकुन मिला था हमें लौटाने के बाद।
आबिद पूरा दम लगाकर रिक्शा खींचता है। रिक्शे की कीमत 15,000 रुपये है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि खुद का रिक्शा भी खरीद सके, लेकिन इतनी बड़ी रकम हाथ में आने के बाद भी आबिद विचलित नहीं हुआ। वो कहता है उसकी रफ़ी के हयात अमीना ने भी उसका पूरा साथ दिया।
मैं रिक्शे ट्रॉली चलाता हूँ, मेरे 3 महीने की बच्ची है, मैं 200-250 रुपये कमाता हूँ। सालों में नहीं होगा 1,00,000 रुपये इकट्ठा। हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, चक्कर में हमने दिया हो गए। आराम का पैसा था ये तो, आराम में जाता है ये तो, आराम मौत में लगता है ये तो, चक्कर में हमने दिया है ये भी, मैं बेकार पैसा था ये।
आबिद रिक्शे की उस दुनिया में वापस लौट गया जहां पापी पेट की खातिर आदमी आदमी का बोझ ढोता है। सत्ता प्रतिष्ठानों में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें याद नहीं रहता कि सरकारी धन जनता की अमानत है, लेकिन एक रिक्शा चालक कहता है ऐसी रकम के लिए ना उसका दीन गवाही देता है ना दिल। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
त्रिपुरा विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो आईपीसी की धारा 302 में संशोधन करके मौत की सजा के प्रावधान को खत्म कर दे। विधानसभा में रखे गए प्रस्ताव में मौत की सजा की बजाय मौत होने तक कठोर कारावास की सजा लागू करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री माणिक सरकार समेत सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने मुख्यमंत्री माणिक सरकार से बात की। आइए सुनते हैं कि इस पर उनका क्या कहना था और मुख्यमंत्री माणिक सरकार की आवाज को आवाज दी है पंकज प्रियदर्शी ने।
मैं विधानसभा का हिस्सा हूं। जब ये प्रस्ताव पास हुआ तो मैं विधानसभा में था। मैंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
302 means what? If anybody killed a person, then actually he,
आप देखिए 302 का मतलब क्या है। अगर किसी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी तब उस पर आईपीसी की ये धारा लगाई जाती है। अगर आप उसे मौत की सजा देते हैं तो ये अपने आप में विरोधाभास है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये सजा नहीं दी जानी चाहिए। मैंने विधानसभा में भी यही कहा कि कठोर सजा ये हो सकती है कि उसे मृत्यु होने तक जेल में रखा जाए। ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को कुछ गुंजाइश मिल सकती है कि वो दोबारा सोचे, सांत्वना दे सके। दूसरी तरफ समाज में ये संदेश जाएगा कि अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे इस तरह का दंड भुगतना होगा। आप देखिए ये सभ्य समाज है। इस समाज में ऐसा लगता है कि मौत की सजा देना बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। कोई ये नहीं कह रहा कि जिस व्यक्ति ने दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध किया हो तो उसे क्षमा कर दिया जाए। ऐसा कोई नहीं कहेगा। उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फांसी की सजा देने के बजाय उसे आखिरी सांस तक जेल में रखा जा सकता है। नहीं तो ये अपने आप में विरोधाभास होगा। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूँ।
Stood inside, it's in favor of this resolution. And that will depend on the government of India. They shall have to decide their mind.
संशोधन भारत सरकार पर निर्भर करेगा। उन्हें अपना मन बनाना होगा। अलग अलग राजनीतिक दल हैं जिनके प्रतिनिधि संसद में हैं। अगर वो संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें संसद में चर्चा करनी होगी। तमाम राजनीतिक दलों ने अब तक इस मुद्दे पर निर्णय नहीं किया है। भारत में कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस खास पहलू पर फैसला कर चुके हैं, तो ये भारत सरकार पर निर्भर करता है।
हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बात की थी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार से, जो कि आप सुन रहे थे। और अब कार्यक्रम में हम अखबारों की चर्चा करेंगे। अखबार पढ़ चुकी हैं, बताइए क्या कह रहे हैं प्रगति।
अखबार में जो खबर है वो आप पहले ही हमारे श्रोताओं को सुना चुके हैं। एक तो ये कि बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति पर नीतीश नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि उनसे सलाह नहीं ली गई। दूसरा रैली है आज बिहार में, बिहार के गया में। दो तीन खबरें और हैं जो लगभग सारे अखबारों में हैं। इसमें एक तो है हिमाचल से उत्तर प्रदेश तक बारिश का कहर है, जम्मू कश्मीर राजमार्ग बंद कर दिया गया है, अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है और हिमाचल के धर्मपुर में बारिश से 4 लोगों की मौत भी हो गई है। नवेद जो पकड़े गए थे आतंकवादी, उनके 2 मददगार गिरफ्तार हो गए हैं और 3 हिरासत में ले लिए गए हैं। एक ये खबर दिलचस्प है कि जो बेजुबान गीता थी पाकिस्तान में, उनके लिए घर वापसी की हर संभव कोशिश की जा रही है और लगभग 4 परिवार
विभिन्न
जी राज्यों में जिन्होंने कहा है कि ये हमारी बेटी हो सकती है। इसके अलावा जनसत्ता में आप नेता कुमार बिस्वास के खिलाफ छेड़खानी की एक और शिकायत जो है वो थाने पहुंची है। डायन बताकर 5 महिलाओं की हत्या कर दी गई, इसके बारे में भी लगभग सभी अखबारों ने लिखा।
और ये जो डायन बताने वाली खबर है ये रांची की है, झारखंड की।
अच्छा, हिंदुस्तान में खबर है व्यापम आरोपियों ने राष्ट्रपति को एक खत लिखा है। 70 मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों ने राष्ट्रपति को एक खत लिख के उसमें कहा है कि या तो हमें बेल दे दें, जमानत दे दें, या हमें खुदकुशी की मंजूरी दे दें। अमर उजाला में खबर है कि नए दौर के बाबा जो हैं वो आजकल घिर रहे हैं विवादों में। रंगीन मिजाजी से सारथी बाबा गिरफ्तार हो गए और तड़क भड़क की लाइफस्टाइल वाली राधे माँ दहेज प्रताड़ना के मामले में हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति। और अब विशेष रिपोर्ट का जिक्र करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 9 साल पहले हुए धमाकों के कई महत्वपूर्ण गवाह पिछले कुछ हफ्तों में मुकर चुके हैं। गवाहों के मुकरने का ये मामला ऐसे समय में आया है जब एक सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA हिंदू चरमपंथियों के विरुद्ध मुकदमों को कमजोर करने के लिए दबाव बना रही है। हमारे साथी शकील अख्तर ने पंजाब में इस केस के वकीलों से मिलने के बाद इस रिपोर्ट में ये जानने की कोशिश की है कि गवाहों के मुकरने से समझौता एक्सप्रेस मामले पर असर क्या होगा।
समझौता एक्सप्रेस में 2007 के बम धमाकों में 68 लोग मारे गए थे। गहरी छानबीन के बाद राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ने इस धमाके के लिए कई हिंदू उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। स्वामी असीमानंद इस धमाके के असल अभियुक्त बताए जाते हैं। वो इन दिनों जमानत पर रहा हैं। पंजाब के एक न्यायालय में चलने वाले इस मुकदमे में हाल में 10 से अधिक सरकारी गवाह मुकर गए हैं। این آئی اے کے وکیل آر کے ہانڈا نے کہا کہ ان کے مقرنے سے کیس پر کوئی پربھاؤ نہیں پڑے گا۔
کورٹ میں 137 وٹنس ہم نے ایگزامن کیے ہیں، 137 میں سے اگر یہ 10 جو ہیں پارشلی میں کہوں گا کہ یہ ہو سیل ہوئے ہیں، اس سے کیس کے اوپر زیادہ افیکٹ نہیں پڑتا ہے، انلیس کے سارے جو ہمارے باقی کے گواہ ہیں ان کے جو ایویڈینس کے اوپر وہ ابھی ہے تو کیس ہمارا ابھی چلے گا اور جھوٹ چلے گا۔
حال میں مالیگاؤں بم دھماکوں کے مقدمے کے سرکاری وکیل رونی سالیان نے آروپ لگایا تھا کہ کیندر میں بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد این آئی اے ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ ہندو ابھیوکتوں کے خلاف نرم رویہ اپنائیں۔
میں سرکار کا طرف سے ہوں مگر یہ پبلک کے لیے ہوں، میں پبلک کو یہ جانکاری ملنا چاہیے ایسا پوسٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے انٹرویو دیا۔
تو کیا سمجھوتا ایکسپریس مقدمے میں اچانک 10 سے زیادہ گواہوں کا مکر جانا کسی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ سرکاری وکیل ہانڈا اس سے انکار کرتے ہیں۔
ہمارے پاس آج تک کبھی ایسا کسی بھی کوارٹر کا کبھی نہیں آیا، میرے کو 35 سال سے اوپر ہو گیا پروفیشن میں اور میں نے بہت سینسٹیو کیسز کو بھی پروسیکیوٹ کیا ہے، پر کبھی بھی ڈفرینٹ گورنمنٹس ہوتی تھی، گورنمنٹ تو وہی ہے، گورنمنٹ آف انڈیا رہتی ہے، اب کون سی پارٹی اس کو رول کرتی ہے دیٹ از ڈفرینٹ، پر کانسٹیٹیوشن لا اور جو پیرامیٹر کورٹ پروسیجر ہے وہ تو سیم رہتا ہے۔
سوامی اسیمانند اور ان ابھیوکت اپنے اقبالیہ بیانوں سے مکر چکے ہیں۔ سوامی اسیمانند کے وکیل رنویر سنگھ راٹھی کا کہنا ہے کہ انہیں پھنسایا گیا ہے۔
پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو یہ سوامی اسیمانند ہیں یا جو باقی کے اور لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ اکیوز نہیں ہیں، دے آر وکٹمز آف پولیٹیکل ٹیرورزم۔ بیسکلی اب پروسیکیوشن کا جو ورژن ہے ان کا کہنا ہے کہ سوامی اسیمانند جو ہے انہوں نے ایک کانسپریسی کی، اس کانسپریسی کو باقی لوگوں نے ایگزیکیوٹ کیا اور یہ بوم بلاسٹ ہوئے حیدرآباد میں، اجمیر میں سمجھوتا بلاسٹ ہوئے۔ لیکن ایک طرف یہ دیکھا جائے کہ اس سے پہلے جو انویسٹیگیشن چل رہی تھی اے ٹی ایس مہاراشٹرا کر رہی تھی، ہریانہ میں جی آر پی نے کیا، سی بی آئی نے ایویڈینس اکٹھا کیا اور کافی سارے لوگ جو اس چارج شیٹ میں جن کے نام آئے وہ جیلوں میں رہے، ان کے خلاف ایویڈینس رہا۔ آج کی تاریخ میں نہ تو سی بی آئی یہ کہتی ہے کہ جو پہلے ہم نے ایویڈینس اکٹھا کیا، جو ہم نے اکیوز بنائے وہ سب غلط تھے، نہ اے ٹی ایس کہتی ہے کہ جو ایویڈینس اے ٹی ایس نے اکٹھا کیا وہ غلط تھا۔
لیکن اچھتم نیائلے کے ورشٹھ وکیل پرشانت بھوشن کہتے ہیں کہ کیندر سرکار ہندو چرمپنتھیوں کے پرتی نرم رویہ رکھتی ہے۔
جب سے بھاجپا کی کیندر میں سرکار بنی ہے تب سے ہر اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے جس میں کہ سنگھ پریوار کے لوگ ایسے ٹوفنسز میں اکیوز رہے ہوں، چاہے وہ مالیگاؤں کے بلاسٹ ہوں، چاہے سمجھوتا ایکسپریس کا معاملہ ہو، چاہے اجمیر درگاہ کا معاملہ ہو، اور کئی سارے ایسے حادثے ہوئے ہیں، ایک نہیں دو نہیں کم سے کم 6 ایسے حادثے ہوئے ہیں جس میں کہ یہ سنگ پریوار کے لوگ بالکل کانسپریسی کے تحت انوالوڈ تھے، جس پر کہ این آئی اے یا ایس آئی ٹی یا سی بی آئی نے چارج شیٹ وغیرہ بنائی۔
سمجھوتا ایکسپریس کے مقدمے کا نرنے ایک ورش کے اندر آنے کی سمبھاونا ہے۔ اس مقدمے میں اگر ابھیوک قانون اور نیائے کی پکڑ سے بچ گئے تو اس سے نہ کیول این آئی اے کی ایمانداری شک کے گھیرے میں آئے گی بلکہ ایک لوکتانترک دیش کے طور پر بھارت کی چھوی کو بھی کافی نقصان پہنچے گا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب کارکرم میں ان خبروں کی بات کریں گے جن پر رہے گی آج ہماری نظر۔
ممبئی کی دھرم گرو رادھے ماں پر دہیج پرتارنا کے کیس کے سلسلے میں ممبئی پولیس آج ان کا بیان درج کرے گی۔ اس معاملے میں 6 انیہ آروپیوں کے نام سمن جاری کر دیا گیا ہے لیکن رادھے ماں پر ابھی کوئی پولیس کاروائی شروع نہیں کی گئی ہے۔ ایک 32 ورشیہ یوتی کا آروپ ہے کہ رادھے ماں نے اس کے ساس سسر کو دہیج کی مانگ کرنے کے لیے اکسایا۔ مالی کی پولیس ان بندوق دھاریوں کی تلاش شروع کرے گی جنہوں نے دیش کے کیندریہ شہر میں ایک ہوٹل پر قبضہ کر لوگوں کو بندھک بنایا تھا۔ اس میں کم سے کم 12 لوگ مارے گئے جن میں سنیکت راشٹر کے لیے کام کرنے والے 4 ودیشی بھی تھے۔ فرانس کے ری یونین دویپ پر فرانسیسی جانچ کرتا رہسیہ پورن طریقے سے غائب ویمان MH370 کے اور اوشیشوں کی کھوج پھر سے شروع کریں گے تاکہ ویمانن کے اتہاس کی سب سے رہسیہ پورن گھٹنا پر کچھ اور جانکاری حاصل کی جا سکے۔ روس کے پردھان منتری دمیتری میدویدیو قزن میں ہنگری کے پردھان منتری وکٹور اوبان سے ملاقات کریں گے۔ दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा संबंधी समझौतों पर बातचीत होगी। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रमुख पीटर माउर यमन की यात्रा तीसरे दिन भी जारी रखेंगे। उनकी तीन दिवसीय यात्रा का मकसद महीनों से युद्ध की स्थिति झेल रहे इस देश में मानवीय हालात का आकलन करना है।
और अब बीबीसी न्यूज मेकर्स में इस हफ्ते हम आपको मिलवा रहे हैं दीपा कर्माकर से, जो कि भारत की जानी मानी जिम्नास्ट हैं।
बीबीसी न्यूज मेकर्स में इस बार हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने गुलाटियां मारते हुए अपनी पहचान बनाई है, और हम गए उनसे मिलने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जहां हमारी मुलाकात हुई भारत की जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर से। दीपा इस वक्त है हमारे साथ। दीपा, कैसा लगा वो ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद?
वो मोमेंट तो मतलब बोलने की मैं कितना खुश थी उस टाइम में बता नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा जो दो वॉल्ट था वो पूरा परफेक्ट हुआ था उस टाइम, और पहले से मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हुआ था, तो इसीलिए मुझे वो मेडल मिलने के बाद बहुत ही खुश हुई, क्योंकि वो ब्रोंज में हो सही पर मेरा जो जितना देना था मैंने उतना दिया और मेडल जीता, मेरा बहुत बहुत खुश हुई मुझे।
एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली वो दूसरी इंडियन प्लेयर बन गई। पर दीपा, ये बताइए कि प्रोदनोवा वॉल्ट, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ तीन खिलाड़ियों के पास है और उन तीन में से एक आप हैं।
हाँ, वो तो हूँ अभी थर्ड वोमेन ऑफ वर्ल्ड जो जिसने इस वर्ल्ड को लैंड किया, उसमें एक मैं हूँ। पर वो वर्ल्ड बहुत ही डिफ़िकल्ट, सब मुझे वो ही पूछते क्यों तुम वो वर्ल्ड अटेम्प्ट करते हो, तो मैं बोलती हूँ कुछ पाने के लिए कुछ तो रिक्स लेना ही पड़ता है, तो मुझे ये रिक्स लेना पड़ता है।
दीपा उस समय चर्चा में आई जब 2007 में जलपाईगुड़ी में हुई इंडिया के नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में उन्होंने मेडल जीता था। सीनियर ग्रुप में उन्होंने 2010 और 2014 में इंडिया की नेशनल चैंपियन रही, और रांची के नेशनल खेलों में उन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते थे।
हाँ, एकदम सही है। 2007 में मैं जूनियर नेशनल से मेडल लिया, 4 गोल्ड 1 सिल्वर। उसके बाद धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आने लगी कि शायद मैं भी जिमनास्टिक कर सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे पापा स्पोर्ट्स पर्सन है, वेटलिफ्टिंग साइक कोच, उन्होंने मुझे डाला था, पर पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद 2009 के लास्ट में मैं कैंप में ज्वाइन किया, इंडिया कैंप में। उसके बाद 2010 में जो CWG दिल्ली में हुआ था, वहाँ से आशीष कुमार ने मेडल जीता था, पहला जो इंडियन कोई जिमनास्टिक्स में मेडल लिया। उसके बाद ऐसा लगा कि मैं भी ले सकती हूँ, तो उसके बाद मेरे कोच और मैंने टारगेट बना के 2014 में CWG लिया और वहाँ से ब्रोंज लिया। उसके बाद धीरे धीरे अभी आगे चल रहे, अभी नेक्स्ट टारगेट है वर्ल्ड चैंपियनशिप, उस वहाँ से मेडल लेके रियो के लिए क्वालिफाई कर ले।
डांस तो कोई भी कर सकता है ना दीपा, लेकिन हर डांसर जिमनास्टिक तो नहीं बन सकता, और एक जिमनास्ट है जो डांस भी कर सकता है, क्या ये बात सही है?
एकदम सही है, क्योंकि हमारा एक अपरेटस है फ्लोर एक्सरसाइज, वहाँ पे हमें डांस के साथ एलिमेंट करना पड़ता है, तो हम तो डांसर भी है साथ में कोरियोग्राफर भी और जिमनास्ट भी है।
तो आपके लिए कोई कोरियोग्राफर है?
नहीं, यहाँ पे अभी कोई कोरियोग्राफर नहीं है हमारा, हम जो एक साथ दोस्त वगैरह रहते हैं, हमें बहुत एक्सपीरियंस हुआ देख देख के, वो सब देख के हम अभी सीख रहे हैं आगे से।
तो क्या भारत सरकार की तरफ से आपको ऐसा कोई कोरियोग्राफर अपॉइंट नहीं किया गया है?
नहीं, किया था, अभी हमारा जो लेडी कोच है वो सब कराते थोड़ा थोड़ा, जैसे हम फॉरेन कैंप में गए थे तब भी हमें वो कराया था कोरियोग्राफर, पर अभी के लिए ज़रूरत नहीं है।
तो यानी कि अब आप कोरियोग्राफी के स्टेप से अपने आप अब करती हैं?
हाँ, अपने आप से। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेरा मेडल आ जाएगा, आई होप। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि मुझे आशीर्वाद करिए कि मैं रियो ओलंपिक में क्वालिफाई करके रियो ओलंपिक खेलूँ।
रियो ओलंपिक में दीपा कर्माकर के साथ हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।
ये थे इस हफ्ते की बीबीसी न्यूज मेकर, और इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से।
बीबीसी समाचार। बिहार के गया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल में ही हुई एक और ब्लॉगर की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसी हत्याओं को और सहन नहीं किया जाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में हजारों प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार कचरा हटाने की व्यवस्था को लेकर पैदा हुए संकट को जल्द से जल्द खत्म करे। मालदीव के सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने एक गुमशुदा पत्रकार के परिवार और समर्थकों को तितर बितर करने के लिए उन पर मिर्ची मिले भुए पानी से बौछार की। सिंगापुर मलेशिया से आज़ाद होने की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर एक भव्य परेड, आतिशबाजी और एयरफोर्स के विमानों के प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। पूरे सिंगापुर में एक लाल बिंदी का प्रतीक चिन्ह बंधनवार की तरह लहरा रहा है। ये चिन्ह एक इंडोनेशियाई नेता के कथन की याद दिलाता है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। एक घंटे बाद यानी कि भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा, मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।